नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइचे के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।